الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، صدق الله العلي العظيم. عرض کیا گیا کہ سورہ مبارک نبأ میں بھی قرآن مجید کے بعض دوسرے سورہ قصار کی طرح الفاظ تو کم ہیں، معانی نامتناہی ہیں. اور تہ در تہ معانی ہے. جو لوگ ذوق سخن رکھتے ہیں، جو زبان کے رمز شناس ہیں، جو لوگ لفظ و معنی کے رشتوں کی نزاکتیں، تہداریاں اور پیچیدگیاں سمجھتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں اکثر یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے، از اول تا آخر، وہ توحید ہے. توحید حق صمدی، توحید صمدی. میں توحید وجودی اور توحید شہودی اور وہ سب ترکیبیں استعمال نہیں کرتا ہوں جو ترکیبیں کہ بعض حضرات نے استعمال کی ہیں اور پھر اس پہ خاصے اختلافات ہیں. میں توحید صمدی کی ترکیب استعمال کرتا ہوں جو قرآنی ترکیب ہے، اللہ الصمد. قرآن نے کہا ہے اللہ الصمد، تو گویا توحید توحید صمدی مطلوب ہے ہم سے. یہ توحید صمدی پورے قرآن مجید کا ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس ایک موضوع کے تحت دوسرے بعض اہم موضوعات ہیں، جن میں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت تمام انبیاء، موضوع ولایت امامت، موضوع قیامت آخرت. یہ موضوعات ہیں اور یہ اہم ترین مقاصد قرآن میں سے. پھر ان موضوعات کے تحت ہزارہا ہزار، ہزارہا ہزار، لاکھوں بلکہ نامتناہی مضامین ہیں جو قرآن مجید میں سموئے ہوئے. پھر ایک مضمون کے اندر اس کے بطن میں دوسرا مضمون چھپا ہوا ہے، اور اس کے بطن میں تیسرا مضمون چھپا ہوا ہے. तो मफाहिम का एक सिलसिला है। और मजामीन का एक सिलसिला है। यहाँ पर ये कायदा एक ज़िक्र कर दूँ तो ये बहुत सी जगहों पे काम आएगा। उलमाए बलागत ने और उलमाए उसूल ने, उसूल फ़िक़ ये बहस की है कि क्या कोई एक लफ्ज़ अगर उसके मुश्तरक मानी हो, मुश्तरक हो लफ्ज़ यानी उसके मानी एक से ज़्यादा हो, तो वो एक वक्त में एक ही इस्तेमाल में एक से ज़्यादा मानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मुतकल्लिम एक लफ्ज़ बोले और एक से ज़्यादा मानी मुराद ले। और इस पे काफ़ी बहस है, काफ़ी बहस है। मसलन हमारे जो बहुत मशहूर किताब है और एक तरह से हौज़ा इल्मिया में इल्म उसूल फ़िक़ का जो बुलंद तरीन दर्स होता है वो उसी किताब के गिर्द गर्दिश करता है। महवरी हैसियत उस किताब को है, किताब किफ़ायतुल उसूल अल्लामा आखुंद ख़ुरासानी की। तो अब आखुंद ख़ुरासानी की राय है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, एक लफ्ज़ एक वक्त में एक ही मानी में इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज़्यादा मानी में इस्तेमाल नहीं हो सकता। खैर ये उनकी राय है और बाज़ और लोगों की राय है, लेकिन बहुत से ऐसे अफराद मुहक्किकीन हैं जिनकी ये राय है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक लफ्ज़ एक वक्त में एक इस्तेमाल में एक से ज़्यादा मानी उससे मुराद लिए जा सकते हैं। और ये फ़कीर समझता है कि यही राय बरहक है। अगर हम इस राय के मुल्तज़िम नहीं होंगे तो मुश्किलात से दोचार होंगे। अब वो राय कहाँ तक साथ देती है और ये राय कहाँ तक साथ देती है, ये बहस तो इल्म उसूल में ही ज़ेब देती है। सिर्फ इशारा कर दिया मैंने कि यहाँ हमारी बुनियाद यह है, हमारी बहसों की बुनियाद इस पर है कि एक वक्त में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल एक से ज़्यादा मानी में न सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि वाक़ है। चुनांचे ये जो ज़ाहिर और बातिन की बात हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि क़ुरान का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, और बातिन का बातिन है, और बातिन का बातिन है। ये कैसे मुमकिन है अगर एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी मुहतमल ना हो, कैसे मुमकिन है? एक मानी के इल्तिज़ाम के साथ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ, मुश्किल कह रहा हूँ। एतराज़ात तो मुश्किलात से दो चार होंगे। अब जब एक लफ्ज़ जिस तरह उसी तरह एक तरकीब है, उसी तरह एक ताबीर है, उसी तरह एक इबारत है, जैसे अन्नबा उल अज़ीम ये दो कलिमात से एक मुरक्कब है। इसको इस्तेमाल करे मुतकल्लिम और एक से ज़्यादा मानी मुराद ले, कोई कबाहत नहीं, मुराद लेने में भी कोई कबाहत नहीं है। और ये भी है कि जब तक जो मकासिद कुरान है वाज़े, जो मकासिद दीन है, उन मकासिद दीन और अहदाफ दीन और मकासिद कुरान से हमाहंग जितने मानी हैं वो सब मुहतमल हो सकते हैं और सब काबिल कबूल होंगे। सिर्फ वो मानी, वो मज़मून, वो बात काबिल कबूल नहीं होगी जिससे दीन में तनाकुब पैदा हो। तनाकुब काबिल कबूल नहीं है। अगर तनाकुब नहीं है तो अक़वाल काबिल जमा हैं, वाज़े है। अब यहाँ अन्नबाउल अज़ीम से क्या क्या मुराद लिया है मुफस्सरीन ने, मतलब तफसीर कबीर राज़ी उठा के देख लीजिए। उसी में पहला कौल तो वो कहते हैं कि इससे मुराद क़यामत है, आखिरत है, लेकिन उसके बाद और अक़वाल का ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि अन्नबाउल अज़ीम से मुराद ख़ुद क़ुरान है, چونکہ کفار مشرکین مکے کے، مکی سورہ ہے، مکے کے کفار و مشرکین قرآن مجید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بطور کلام حق سبحانہ و تعالیٰ، کلام الہی وحی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بارے میں مختلف فیہ تھے، یعنی اختلاف کر رہے تھے، کانوا یختلفون علی القرآن، علی الوحی، علی نزول القرآن. تیسرا قول خود نبوت ہے، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر کیا ہے فخر رازی نے. ہمارے یہاں دو اقوال پہ زیادہ ارتکاز ہے. ایک قول یہ کہ النبع العظیم سے مراد آخرت ہے، اور دوسرا قول یہ کہ النبع العظیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی ولایت ہے. دونوں قول درست ہیں اور دونوں قول دراصل ایک ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ روز غدیر کی قسم روز حساب ہے علی، یا روز الست کی قسم روز حساب ہے علی. اس کو سمجھنے کے لیے ظرف چاہیے، ظرف، ظرف پاکیزہ، ایسا ظرف جس میں نورانیت ہو، قلب نورانی چاہیے، ذہن نورانی چاہیے، ذہن و قلب پاک چاہیے، طاہر و مطہر. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ النبع العظیم سے مراد نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں النبع العظیم سے مراد ولایت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے. یعنی اس میں استبعاد کیا ہے؟ یہاں پر ایک مقدمہ اور عرض کر دوں لازمی، یہ سب باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک کہ دین کو صرف اور صرف اور صرف وسیلہ کسب معاش و وسیلہ آسائش دنیاوی اور وسیلہ سیاست دنیاوی بنا کر رکھا جائے گا. ہم خود کہتے ہیں کہ دین دنیا کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے. بالکل ہے، یہ درست ہے، دین دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن دین صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. مقصد دین، ہدف دین، غرض و غایت دین آخرت ہے. یہ اصل نگاہ سے ایک آن کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے. ہم کتنا ہی نظام سیاسی اسلامی قائم کرنا چاہیں، مگر کس لیے؟ بخاطر خدا، بخاطر آخرت، نہ کہ بخاطر دنیا. یہ دنیا بہرحال آنی اور جانی اور فانی ہے. یہاں جانی جو میں نے استعمال کیا، اسے آپ عربی کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دنیا آنی ہے، ایک آن بھر کی ہے، جانی ہے یعنی جنایت کار ہے، اور فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. اردو میں جانی کے معنی جانے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا آنی ہے، جانی ہے، فانی ہے. دنیا کو بہترین طریقے سے تسخیر کرنا ہے، بہترین طریقے سے تدبیر کرنا ہے، اور بہترین طریقے سے چلانا ہے، بہترین سیاست کرنی ہے، مگر بخاطر خدا و بخاطر آخرت. اس کو قرآن مجید نے طرح طرح سے اس نقطے کو اس واضح کیا. مثلا سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ جو بات کہی گئی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ये जमीन और आसमान और जो कुछ इसमें है, इसमें बहुत निशानियां हैं। और जो लोग अल्लाह के बारे में सोचते हैं, अल्लाह के लिए सोचते हैं और हर हाल में सोचते हैं, क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, जब खड़े होते हैं तब भी, बैठते हैं तब भी, और लेटे हुए होते हैं तब भी, इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि एक आन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी ये असल, ये नुक्ता निगाह से ओझल नहीं होना चाहिए। क्या? कि हक़ सुबहानहु व तआला ने ये जो आलम खिलकत को आबाद किया है, ये बेसबब, बेगरज़ो गायत, महज बातिल आबाद नहीं किया है। बातिल नहीं। बातिल के क्या मानी है? बातिल के मानी ये हैं कि हम 60 बरस, 100 बरस, 200 बरस, 1000 बरस ज़िंदगी गुजारें और उसके बाद अंजाम क्या हो? उसके बाद नाबूदी, नाबूदी है महज, फना, यानी कुछ नहीं। तो ये जो 1000 बरस की, 2000 बरस की, 500 बरस की, या 60 बरस, 50 बरस की ज़िंदगी थी, ये क्या हुई फिर? बातिल, हवा अम मंसूरा हैं, ये बातिल, कुछ नहीं। 100 बरस जी लिए, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। इंसान 50 बरस ज़िंदगी बसर करे, या 100 बरस ज़िंदगी बसर करे, या 1000 बरस, इस ज़िंदगी को, ये तो ख़त्म हो जाएगी दुनिया और ये ज़िंदगी, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमें वो चीज़ मिले जो कभी ख़त्म होने वाली न हो, तो होगा कि हाँ, मामला बातिल नहीं है, मामला जो है नफ़े का मामला है। तो जो लोग सिर्फ दुनिया पे इन्हिसार करते हैं और दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया पे मर मिटते हैं, वही खसारे में होते हैं। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, ये खुसरान क्या है? खसारा, बातिल मामला है, कुछ भी नहीं हाथ लगा, इन्वेस्टमेंट बेकार गया। यानी इंसान की उम्र, वक्त, टाइम, इंसान की तमाम सलाहियतें, इम्कानात, इस्तेदाद, फैकल्टीज़, जितनी भी एबिलिटीज़, जो कुछ भी इंसान के अंदर सलाहियत है, सब सर्फ किया, खपा डाला, और उसके बाद नतीजा, नतीजा नथिंग, सिफर। ये मामला बातिल नहीं है तो क्या है? ठीक है। और बार बार कुरान ने कहा कि हमने ये बातिल नहीं पैदा किया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में, जो सूरह मुबारक अहज़ाब में आयत है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। तुम्हारे लिए अल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला के रसूल में बेहतरीन नमूने अमल है, लेकिन किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, वो जिसकी तलब अल्लाह हो और रोज़े आखिरत, न कि दुनिया। दुनिया तलबों के लिए रसूल की सीरत नमूना नहीं है। और यहाँ ठहर के मैं तवज्जो दिला दूँ कि ये जो बार बार आवाज़ उठती है कि रसूल, नऊज़ु बिल्लाह, मासूम नहीं थे, रसूल से भी गलतियाँ हुईं, ये उस गरोह की तरफ से आवाज़ उठती है, या वो उन जहनों की चीख है, उन जहनों की बेबसी की फरियाद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के लिए नमूने अमल बनाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं अपनी दुनियावी अक़ल से सोचते हैं कि हाँ रसूल अल्लाह को यूँ करना चाहिए था, नहीं किया। और यही मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पे नज़र डालते हैं। बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाह कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सियासी गलतियाँ तो हुई, बहुत जाहिद थे, बहुत आलिम थे, बहुत रूहानी शख्सियत थी, मगर ये कि सियासत नहीं जानते थे और सियासी गलतियाँ बहुत की अली ने। कौन कहता है ये, कौन, किस जहन की आवाज़ है ये? ये उस जहन की आवाज़ है जो अपना आगाज़ और अंजाम और सब कुछ, हासिल व मा हासिल सब कुछ इसी दुनिया को समझते हैं। जिन लोगों के सामने आखिरत है उनकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकल नहीं सकता। तो जो सियासी इस्लाम किसी भी शक्ल में, किसी भी ग्रोह की तरफ से हो, किसी भी मसलक की तरफ से, जो सियासी इस्लाम है ना, सियासी इस्लाम का मतलब कि जहाँ इस्लाम कुर्बान हो जाए सियासत पर, सियासी इस्लाम है। इस्लाम इस्तेमाल हो किस लिए? सिर्फ सियासत के लिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल हो सिर्फ अपना परचम बुलंद करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना इख्तदार कायम करने के लिए, अपना तसल्लुत कायम करने के लिए, और दुनिया को गुलाम बनाने के लिए, औरतों को कनीज बनाने के लिए। और ये नज़रिया बातिल है, ये नज़रिया बातिल है। दीन दुनिया को गुजार कर बेहतर से बेहतर उसलूब में आखिरत को संवारने के लिए आया है। हदफ दीन, हदफ नबूवत खुदा और आखिरत है, अल्लाह और यौमुल आखिर, अल्लाह और यौमुल आखिर, अल्लाह और यौमुल आखिर। और यौमुल आखिर बहुत बड़ी हकीकत है, आखिरत की ज़िंदगी वही असल ज़िंदगी है। व इन्न दार अल आखिरता लहियल हयवान, दार आखिरत ही हकीकत ज़िंदगी है, हकीकत में ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी। ये ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उस ज़िंदगी के मुकाबले में ये ज़िंदगी मौत है। तो ये एक असल है, इसे मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है कि हमारे सामने हमेशा हमेशा हर आन हर लहजा हर नफस अल्लाह और आखिरत, अल्लाह और आखिरत, अल्लाह और आखिरत होना चाहिए। ठीक है, दुनिया का हर काम करें मगर अल्लाह और आखिरत को फरामोश ना करें। अल्लाह और आखिरत को फरामोश कर देंगे तो सब बातिल है। अगर ये असल मजबूती से समझ में आ जाए तो इस बात को समझा जाएगा कि नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने के असल मानी क्या हैं, और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अहमियत क्या है। दुनिया परस्ती के साथ ये साजगार नहीं है, सच खुलेंगे नहीं वो असरार, वो रमूज विलायत अली इब्न अबी तालिब, नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विलायत इलाहिया, ये दुनिया परस्ती के साथ नहीं खुलने वाली हैं ये बातें। इस बात को यहाँ इस पे इक्तफा करते हैं और अब हम इशारा करते हैं कि यौमुल आखिर या कयामत और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी में रिश्ता क्या है। इल्म इरफान की असलाहों पर अभी नहीं काम कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, उससे पहले हम फिर जाहिर ही से मदद लेके बातिन की तरफ बढ़ें। जाहिरी तफसीर क्या है यौम की? यौम लैल, तमाम मुसलमानों से पूछिए जो बुजुर्ग अकाबिर मुफस्सरीन हैं, मतलब सूरह मुबारक इब्राहिम में आया है वज़क्किर होम बे अय्याम अल्लाह, अय्याम यौम की जमा है, यानी ने याद दहानी कराओ इनको अय्याम खुदा की। अय्याम अल्लाह से क्या मुराद है यहाँ? मुफसरीन क्या कहते हैं, जाहिर इबारत क्या है, अय्यामुल्लाह से मुराद एक कौल यह है जिसे यानी अजिल्ले मुफसरीन अकाबिर मुफसरीन नकल करते हैं और उस पर एतमाद करते हैं कि यहाँ यौम से मुराद या अय्याम से मुराद ये 10-12 घंटे 14 घंटे का ये रोज़े रोशन नहीं है जो सूरज की गर्दिश के नतीजे में पैदा होता है एक दिन, और इसके एक दिन को आप यौम कहते हैं और इसकी जमा अय्याम है। कहते हैं कि अय्यामुल्लाह ऐ ज़क्किर हम बे अय्यामिल्लाह यानी ज़क्किर हम बे निअमिल्लाह, इन्हें याद दहानी कराओ अल्लाह की नेमतों की। तो निअमिल्लाह न कहकर क्या कहा गया, ताबीर क्या अख्तियार की गई, अय्यामिल्लाह। ठीक है, तो यहां यौम के मानी वो तो नहीं हुए ना कि वो दिन, ज़क्किर होम बेअय्यामिल्लाह यानी गोया अल्लाह सुबहाना व ताला हुक्म दे रहा है अपने नबी को, ये बनी इसराइल से मुताल्लिक है कि हमने बनी इसराइल पर जो नेमतें नाजिल की हैं वो इन्हें याद दिलाओ, जो हमने एहसानात किए हैं, जो नेमतें की, जो अल्ताफ़ और इनायात किए वो इन्हें याद दिलाओ। तो उसको कहा गया वह ज़क्किर होम बेअय्यामिल्लाह। अब ज़ाहिर से बातिन तक पहुंचने के लिए एक इशारा है, अगर अय्याम निअमिल्लाह है यानी नेमतों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो मिल्लत इस्लामिया पर खसूसियत के साथ और तमाम कायनात पर उमूमियत के साथ बदस्ते मुस्तफ़ा जो फैज़ान इलाही हुआ, सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, खुद ज़ात गिरामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, ज़ात अली अल्लाह सुबहाना व ताला का बहुत बड़ा मोजज़ा है और बहुत बड़ी नेमत है, नेमत है, नेमत है, और आपकी विलायत नेमत है। इसीलिए आया अकमलत में मौजूद है अल्यौम अकमल, वहाँ भी लफ्ज़ अल्यौम है, अल्यौम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमत, आज हमने तुम्हारे ऊपर नेमत को तमाम कर दिया। दूसरे मानी क्या है, ये रिवायत अलबत्ता ये कौल इब्ने अब्बास से मंसूब है, इब्ने अब्बास ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसे मरफू करा कि ज़क्किर हम बे अय्यामिल्लाह ऐ ज़क्किर हम बे निअमिल्लाह सुबहानहू व तआला। दूसरा कौल यह है कि अय्यामुल्लाह से मुराद है ज़क्किरहुम बिअय्याम अल्लती इंतकम अल्लाहु फीहा मिन अल-उसात, उन दिनों की याद दिलाइए, याद दहानी कराइए जिन दिनों में अल्लाह ने अपने गुनाहगारों से इंतकाम लिया है, सरकशों से, सरकशी करने वाली कौमों से इंतकाम लिया है, यानी जिन दिनों में अजाब नाजिल हुए हैं। हैं, ये भी एक कौल है, मैं रद्द नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे नज़दीक मुश्किल है ये कौल, वो पहला कौल ज्यादा मिजाज रहमत से मुत्तफिक है, मुताबिकत रखता है। बहरहाल ये भी एक कौल है। तो अब अय्याम की ताबीर क्या हुई, हर रोज़ थोड़ी मुराद हुआ, वो जिसमें अल्लाह दुश्मनों से इंतकाम ले, ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में दोनों जंबे मौजूद हैं, मोमिनीन के लिए बतौर ख़ास और पूरी कायनात के लिए बतौर आम आपकी ज़ात गिरामी और आपकी विलायत एक अज़ीम नेमत इलाहिया है, और आपकी तलवार दुश्मनान खुदा से इंतकाम का बेहतरीन और सबसे बड़ा वसीला है। देख रहे हैं मुनासिबतें, अभी मैं जहन तकरीब जहन जाहिर से बातिन तक का सफ़र कैसे तय होगा, ये बातिन के लिए तावीली जो अकवाल हैं यूं ही थोड़ी कह दिए गए हैं ज़ाती अकीदत और इरादत की बिना पर। निज़ाम कुरानी और निज़ाम मानी कुरानिया को समझने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं। रोज़े आखिरत क्या है? रोज़े हिसाब। रोज़े आखिरत क्या है? रोज़े मीज़ान। रोज़े आखिरत क्या है? वो रोज़ जिसमें आखिरी हुक्म होगा अल्लाह का। अब यहाँ पर ज़रूर बाज़ वो ख़ास रिवायतें हैं जो सिर्फ़ उलमाए इमामिया से आई हैं हम तक, अगरचे उसके अभी इस्तेमाल कहीं ना कहीं दूसरे उलमा से के अक़वाल और फरामीन से भी मुमकिन है, लेकिन इस वक्त हम महदूद कर रहे हैं गुफ्तगू। सूरह मुबारक यासीन में 12वीं आयत में जो इरशाद फरमाया गया, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आथारहुम व कुल्ल शयइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। तो इसमें भी तफसीर व तावील में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी का हवाला आता है। कैसे? ये रिवायत अल्लामा शेख सदूक ने अपनी किताब मआनिल अखबार में नकल फरमाई है। सनद पे अभी हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन रावी अव्वल इसके अबुल जारूद हैं। खुद अबुल जारूद के बारे में बहुत बहस है, लेकिन अल्लामा रिजाली आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम खुई रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम बहस के बाद उसे फ़िक़ह माना है और एतमाद किया है अबुल जारूद। तो अबुल जारूद रावी अव्वल हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से। अबुल जारूद से किताब तफसीर भी मरवी थी। बहुत बहस है खुद अबुल जारूद के बारे में, वो काबिल तहक़ीक है। हमारी भी राय नाचीज से यही है कि अबुल जारूद या इस तरह के जो किरदार हैं उनके मुखालिफत में जो रिवायतें पाई जाती हैं वो उसके कुछ और असबाब हैं। वो रिवायतें मौजूआ हैं, मजूला हैं और उसके और असबाब हैं। बहरहाल ख़ुद ये कौल बहुत अहमियत रखता है और अल्लामा सदूक का नकल करना अहमियत रखता है कि मआनिल अखबार में अल्लामा सदूक ने इस रिवायत को दर्ज फरमाया है मानिए इमाम मुबीन में, कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा में से दो हजरात अपने अपनी जगहों से बुलंद हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये इमाम मुबीन क्या है? क्या इससे तौरात मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। क्या इससे इंजील मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। कहा क्या इससे कुरान मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा हुआ हाजा, ये है इमाम मुबीन। इस ज़ात के अंदर अल्लाह ने तमाम इल्म का एहसा कर रखा है। अब ये एक ऐसा फ़िक्रा है। अच्छा ये देखिए शवाहिद में अगर जाएं तो वही मशहूर हदीस अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, इसके क्या मानी है? इसके क्या मानी? यानी बाज़ हज़रात इस तरह की ताबीरें उनसे हज़म नहीं होती, समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। यानी अगर इमाम मुबीन कहा जाए एक लौह है जिसमें अल्लाह ने तमाम इल्म को जमा कर लिया है तो वो काबिल कबूल है। एक लौह जैसी भी लौह हो, ठीक है ना, या एक फरिश्ता है जिसके अंदर सब जमा कर दिया अल्लाह ने, वो काबिल कबूल है, ठीक है। एक चिप है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें जमा कर सकते हैं, वो काबिल कबूल है। अल्लाह जैसा कादिर ज़ात गिरामी अली इब्न अबी तालिब में जो उसकी बेहतरीन मखलूक़ हैं इल्म का एहसान नहीं कर सकता? इस्तेबाद किस चीज़ का है? क्या चीज़ समझ में नहीं आती? क्या चीज़ काबिल कबूल नहीं है? सिवाय ये कि दिल में निफाक हो या अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हसद हो, और कोई चीज़ नहीं हो सकती ऐसी कि जिस जो इसमें इस्तेबात पैदा करे कि नहीं ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है, क्या चीज़ मुमकिन नहीं है, ताज्जुब की क्या बात है। लौह में इल्म समो दिया जा सकता है, ज़खीरा किया जा सकता है कि एक लौह में तमाम का तमाम इल्म समो दिया अल्लाह ने अव्वलीन आखिरीन का, या एक मलक की पेशानी पे सब तहरीर लिख दी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी में अल्लाह ने इल्म का एहसा फरमा दिया, ये चीज़ काबिले कबूल नहीं होती। क्यों नहीं काबिले कबूल है, इस्तेबाद क्या है, मंतकी इस्तेबाद है, अकली इस्तेबाद है, अमली इस्तेबाद है। न मंतकी इस्तेबाद है, न अकली इस्तेबाद है, न अमली इस्तेबाद है, न आदी इस्तेबाद है। आदतन ये मुमकिन है, अल्लाह सुबहानहु व तआला क़ादिर मुतलक़ है, अव्वलीन व आखिरीन का इल्म उसने एहसा किया है। ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ात गिरामी मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम में वो शहर इल्म है, ये बाब शहर इल्म है, ये इमाम मुबीन है। अगर ये इमाम मुबीन है, अगर ये इमाम मुबीन है, अगर इनके अंदर सारा इल्म अल्लाह सुबहाना व ताला ने, वो भी कौन सा इल्म बतौर ख़ास, व नक्तुबु मा कद्दमू व आथारहुम, तमाम इंसान जो कुछ करते हैं और उनके जो आसार हैं मुतरतब होते हैं उन सब को जमा कर दिया है, तो फिर अहसैना हो व कुल्ल शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। तो ये जो रोज़ हिसाब, इस इल्म की ज़रूरत पेश आएगी या नहीं, तो अब कोई अलाका कायम हुआ या नहीं रोज़ आखिरत में और ज़ाते गिरामी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम में, वाज़े है रिश्ता कायम हुआ ज़ात अली में और रोज़ आखिरत में। यहाँ ठहर के मैं एक अदबी मिसाल दे दूँ जो कि एक इरफानी मानवियत रखती है। लखनऊ के दबिस्तान के बानी बहुत बड़े शायर थे, उस्ताद शायर थे, उमूमन उन्हें ज़बान का शायर समझा गया, और उन्होंने उनके दीवान का ज़्यादातर हिस्सा कमज़ोर है इस लिहाज से, लेकिन चंद अशार उनके ऐसे हैं कि जिसकी बिना पे उन्हें अजीम शायरों में शुमार करता हूँ मैं। मसलन उनका एक मतला है, मेरा सीना है मशरक़ आफताबे दाग हिजरा का, मेरा सीना है मशरक़ आफताबे दागे हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का। कयामत खेज शेर है ये, मसनवी मौलाना रूम को निचोड़ के गोया उन्होंने इन दो मिसरों में रख दिया है। बिश्नवज नई चुन हकायत मी कुनद वस जुदाई हा शिकायत मी कुनद, वो जो शुरू होती है मसनवी, ये दाग हिजरा कौन सा दाग हिजरा है, ये वही दाग हिजरा है, लेकिन ये दाग हिजरा ये आफ्ताब है, यही दाग हिजरा इसी में ताबिश है, नूर है, ताबकारी है। अब मैं वक्त नहीं है कि इन दो मिसरों की तशरीह करूं, मगर इस्तेशहाद के तौर पर कि ये इस मज़मून में गौर करें कि हक़ सुबहानहु व तआला से जुदा होने का जो दाग है वो सीने में है। तो मेरा सीना है मशरक़ आफ़ताबे दागे हिजरा का, ये दाग हिजरा के आफ्ताब का मशरक़ है। अब क्यों कहा है मशरक़ यहाँ पर, असल वहाँ से अगर जुदा ना होते तो फिर ये पूरी दुनिया जो है ये भी तो आबाद ना होती, तो तमाम आलम हस्ती की चहल पहल और ये जगमगाहट ये सब जो है ये उजाला वजूद का, ये भी तो उसी हिजरत हिजरत हिजरान के नतीजे में है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये है दाग हिजरा, असल से जुदा होने का गम है और इसलिए पलटना है। तो जब ये सीना चाक होगा, गरेबां चाक होगा, गरेबान जो है ये इरफानी शायरी में गरेबान अलायक़े दुनिया की अलामत है, यानी जब दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, दुनिया से अगर रिश्ता तोड़ दे इंसान, गरेबान चाक हो जाए, ये गरेबां चाकी जो है, तो नतीजा ये होगा कि ये फिर विसाल की नौबत आएगी। जो विसाल की नौबत आएगी तो वही है, इसी को कहा गया है कि तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का। इस मजमून को अब इस वक्त तबीयत साथ नहीं दे रही है, मेरा ख्याल है कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। इस मजमून को समझें कि एक आरिफ, एक आशिक अल्लाह, एक बंदे हक, बंदे हक उसकी बंदगी करने वाला, वो फिल वाक़े ये दावा कर सकता है कि तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का। तो इन कुजा उन कुजा ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये सब बयान तकरीब ज़हन और तकरीब खातिर के लिए कर रहा हूँ ताकि वो उस मतलब तक पहुंच सके हम, कि एक आरिफ की तफसीर में ये फकरा इस तरह से नकल हुआ है कि अन्नबउल अज़ीम हुवल क़ियामतुल कुबरा वलिज़ालिका क़ीला फी अमीरिल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुवन्नबउल अज़ीम। النبأ العظيم هو القيامة الكبرى، النبأ العظيم قيامة كبرى ہے، نبأ العظيم قيامة كبرى ہے، اور اسی لیے ولذلك تعبیر یہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نبأ عظیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آج کی بھی پوری گفتگو تمہید ہی تھی असल हकीकत को समझने के लिए, और आज इस मकदार पे इक्तफा करते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद मतालिब फिर कल अर्ज करेंगे। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह और आखिरत को अपनी निगाहों से कभी होजल ना होने दें, النبوة مصطفى صلى الله عليه وسلم وولاية علي مرتضى عليه الصلاة والسلام وولاية أئمة أطهار والنبوة جميع أنبياء کی روشنی میں ہم اس دنیا کو آخرت سازی کے لیے استعمال کر سکیں، ہم اس دنیا کو استعمال کریں پوری طرح سے آخرت سازی کے لیے استعمال کریں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله، الله أكبر، محمد رسول الله يا حبيب